आप हैं SBS हिंदी के साथ।
SBS हिंदी पर गौरव वैष्णव के साथ सुनिए शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। जॉब कीपर योजना का आज आखिरी दिन, 150,000 लोगों के बेरोजगार होने की आशंका। भारत के पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच फोन रिकॉर्डिंग को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने, और सचिन के बाद अब यूसुफ पठान भी कोरोना की चपेट में। और अब समाचार विस्तार से। क्वींसलैंड में कोरोना वायरस का तीसरा स्थानीय मामला दर्ज हुआ है। हालांकि पुलिस ने एक मामले को लेकर उनके घर जमा हुए लोगों के बारे में सही जानकारी भी दी है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि एक शख्स जिसे कि कोरोना संक्रमित पाया गया है, उसके घर में आयोजित एक पार्टी में केवल 5 लोग ही थे, जबकि इससे पहले 25 लोगों के यहां पर जमा होने की बात कही गई थी। जो नया केस रिपोर्ट किया गया है वो पहले से ही संक्रमित शख्स का भाई है, हालांकि वो शख्स अब संक्रमित नहीं है। राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेनेट यंग इस बारे में कहते हैं,
This gentleman is perfectly well, fully recovered, and was picked up through our contact tracing process. So we tested him, his PCR negative, so he's not currently infectious, he's fully recovered, but his serology is reactive, and it suggests that he has had the infection and recovered. We won't be able to do genome sequencing on him because he doesn't have any active virus at the moment, but we will continue to test him to see if we can work out what has happened.
आज ऑस्ट्रेलिया सरकार की जॉब कीपर योजना खत्म हो रही है। माना जा रहा है कि इससे करीब 150,000 ऑस्ट्रेलियाई लोगों की नौकरी जा सकती है। लेबर पार्टी के ट्रेजरी मामलों के प्रवक्ता जिम चामस का कहना है कि देश भर में लोगों की नौकरी बचाने के लिए जॉब कीपर योजना को कुछ समय के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन फेडरल सरकार में ट्रेजरर जोश फ्राइडनबर्ग कहते हैं कि जनता को इस बात का आश्वासन देना भी ज़रूरी है कि उन्हें दूसरी आर्थिक सहायता दी जाएंगी।
Well, there's no doubt that there will be some businesses that will continue to do it tough once JobKeeper ends. But as a program, it was always a temporary one. Our support continues through targeted programs like the Tourism and Aviation program, like the Arts program, like the cheap loans that are available more broadly across the economy. And we'll continue in this year's budget to make further announcements that support economic activity.
फेडरल लेबर नेता एंथनी एल्बनीजी ने कहा है कि क्वींसलैंड के एमपी एंड्रयू लेमिंग को संसद से तुरंत बाहर हो जाना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ असम्मानजनक व्यवहार के बाद बोमन से एलएनपी सांसद लेमिंग ने कहा कि वो अगला फेडरल चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ट्रेजरर जोश फ्राइडनबर्ग ने कहा है कि श्री लेमिंग को संसद में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जारी रखना चाहिए।
Is someone who trolls and bullies women online, his own constituents, bringing one to despair and to think about ending her own life. We've seen him harass a state MP. The fact is that Andrew Lamming isn't fit to be a member of parliament today. Andrew Lamming should go.
म्यांमार में 100 से ज्यादा लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की मौत की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और साउथ कोरिया ने म्यांमार में निहत्थे लोगों के खिलाफ सैन्य बल के इस्तेमाल की निंदा की। कई देशों के सैन्य अधिकारियों ने म्यांमार के सशस्त्र बलों से आग्रह किया है कि वो देश के लोगों के प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाएं और विश्वसनीयता बहाल करें। 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट के बाद से अब तक 27 फरवरी का दिन सबसे खूनी दिन रहा, जबकि करीब 114 लोगों को मार दिया गया, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। और अब खबरें भारत से। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 62,714 नए मामले सामने आए हैं, साथ ही पिछले 24 घंटे में 312 लोगों की जान भी गई है। अब तक मृतकों की संख्या 161,552 पहुंच गई है। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 486,310 हो गई है। जिन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब और गुजरात शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से राज्य सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव आयोग की चाक चौबंद व्यवस्था की वजह से ज्यादा लोग मतदान कर रहे हैं।
पहले ऐसा होता था कि मतदाताओं के अंदर एक दहशत सी रहती थी और मतदान करने के लिए वो जाने का साहस नहीं जुटा पाते थे, लेकिन इस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने भी जिस प्रकार की चाक चौबंद व्यवस्था की है उसके परिणाम स्वरूप लोग साहस जुटा पाए हैं और मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, और जो रुझान देखने को मिली है उससे अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी।
वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिन के बांग्लादेश दौरे से वापस लौट आए हैं। उन्होंने इस दौरान बांग्लादेश के लिए कई घोषणाएं की। उनके इस दौरे को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी मार्केटिंग बताया है।
कभी कहते हैं बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके आपने जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया, तो कौन सच्चा है और कौन बुरा है, कौन सच्चा है तो कौन झूठा है, इसको जवाब चाहिए, नहीं होगा तो हम जितना तक जाना है हम जाएंगे।
चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच फोन रिकॉर्डिंग को लेकर नया मोर्चा खुल गया है। पहले बीजेपी ने एक फोन कॉल जारी किया जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित तौर पर पार्टी के पूर्व नेता प्रलय पॉल से तृणमूल कांग्रेस में लौटने की बात कर रही हैं। प्रलय शुभेंदु अधिकारी के करीबी हैं। ममता ने कथित तौर पर प्रलय से टीएमसी की मदद का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी एक फोन कॉल जारी किया है। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया से बातचीत में मुकुल रॉय उनसे चुनाव आयोग के समक्ष उठाए जाने वाले मुद्दों पर बात कह रहे थे। इसमें मुकुल रॉय कथित तौर पर कहते हैं कि चुनाव आयोग से बंगाल के किसी भी वोटर को किसी भी बूथ पर बूथ एजेंट बनाने की अनुमति देने का प्रशासनिक आदेश जारी करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। बूथ एजेंट किसी पोलिंग बूथ पर पार्टी का सदस्य होता है जो सामान्यतः उसी बूथ का निवासी होता है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी रविवार को यह खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपये में कीमत 55.30 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 76 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। यूसुफ ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इससे पहले सचिन तेंदुलकर भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। सचिन के बाद अब यूसुफ का भी कोरोना पॉजिटिव होना चिंता का विषय है। आपको बता दें कि रोड सेफ्टी विश्व सीरीज़ में यूसुफ पठान भी तेंदुलकर के साथ खेलते हुए दिखे थे। सचिन और यूसुफ इस सीरीज़ में इंडिया लेजेंड्स की टीम के सदस्य रहे थे। टेनिस में मियामी ओपन में ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को दोहरा झटका लगा है। एलेक्स डेमिनोर और जॉर्डन थॉम्पसन ATP मास्टर्स 1000 इवेंट के दूसरे राउंड में हार कर बाहर हो गए। डेमिनोर को कोलंबिया के डेनियल इलाही ने 4-6, 6-3, 4-6, 4-6 से हराया, जबकि थॉम्पसन को क्रोएशिया के मिलोस रोनिक ने मात दी। और अब डालते हैं नज़र कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में धूप रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में भी धूप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में धूप रह सकती है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में छिटपुट बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में भी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में आंधी के साथ छिटपुट बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री, जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी नई दिल्ली में धूप रहने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 डिग्री, जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचारों में आज इतना ही।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।